नमस्कार श्रोताओं, गिद्ध और मोबाइल वाणी के लिए मैं संजीवन कुमार सिंह। मोबाइल वाणी पर चल रहे कार्यक्रम पक्ष विपक्ष, राजनीतिक दलों का बढ़ता चंदा और जनता की घटती भागीदारी। नागरिकों को राजनीतिक दलों के चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। बता दें कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु नागरिक होता है और उस व्यवस्था को आकार देने के लिहाजे से राजनीतिक दल रीढ़ के समान होती है और इस व्यवस्था के तहत राजनीतिक दल बेहतर शासन के लिए कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति और नागरिकों का सही मायने में सर्वोपरि मानने की मंशा पर ही निर्भर करता है कि कौन सा देश चहुंमुखी प्रगति की राह पर सही रूप से आगे बढ़ रहा है। भारत में चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इसी से जुड़ा हुआ है। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के लिए वित्त पोषण यानी चंदे से जुड़ी है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ 31 अक्टूबर से सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। यह पीठ 4 याचिकाओं की समूह पर सुनवाई कर रही है। चुनावी बॉन्ड योजना सिर्फ चुनाव सुधार या राजनीतिक चंदे तक सीमित मसला नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों या सरकार और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच साठगांठ के आरोप दशकों से लगते रहे। इस नजरिए से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का संबंध लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुचिता और पारदर्शिता के साथ ही सरकार और राजनीतिक दलों की जवाबदेही से जुड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस स्कीम को 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। राजनीतिक दलों को नगद चंदे के एक विकल्प के तौर पर और इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना बताया गया था। हालांकि इसी पारदर्शिता को लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे और इस स्कीम की वैधता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और बाकी पक्षों की ओर से क्या दलील दी गई, उस पर भी मंथन करने से पहले इस स्कीम से जुड़े कुछ तथ्यों पर नजर डाला गया था। इस योजना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गुमनाम तरीके से राजनीतिक दलों को मोटी रकम चंदा के तौर पर दे सकता है। तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को आम बजट भाषण में चुनावी बॉन्ड को लाने से जुड़े प्रस्ताव की घोषणा की थी। इसे राजनीतिक दलों का फंडिंग के लिए एक पारदर्शी तरीका बताया गया था। उस समय मोदी सरकार की दलील थी कि आजादी के बाद से ही राजनीतिक दलों जो चंदा मिलते आ रहा है उसका अधिकांश हिस्सा नगद में दिखाए गए अज्ञात डोनेशन के जरिए हासिल होता रहा है। चुनावी बॉन्ड प्रस्ताव के साथ ही अज्ञात स्रोतों से नगद यानी कैश के तौर पर दिए जाने वाले राजनीतिक चंदे की राशि को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। राजनीतिक चंदे से जुड़े इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 के साथ ही विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन किया गया। चुनावी बॉन्ड स्कीम 2 जनवरी 2018 से लागू हो गया। चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत सत्ताधारी BJP को काफी राजनीतिक चंदा हासिल हुआ और यह काफी कितना है इसका अंदाजा ADR की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 की 5 वर्ष की अवधि में BJP को प्राप्त कुल चंदे में से 52% हिस्सा चुनावी बॉन्ड से हासिल हुआ। इस दौरान BJP को चुनावी बॉन्ड से तकरीबन 5,272 करोड़ रुपए बतौर चंदा हासिल हुआ था। सिर्फ चुनावी बॉन्ड की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2021-22 तक सभी पार्टियों को मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड से 9,188 करोड़ रुपए बतौर चंदा हासिल हुए। इसमें BJP का हिस्सा 57% से अधिक था, कांग्रेस का हिस्सा महज 10% यानी 952 करोड़ रुपए था और यह आंकड़े 7 राजनीतिक दलों और 24 क्षेत्रीय दलों से जुड़ा है। इससे समझा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड लाने से सबसे अधिक लाभ किस पार्टी को हुआ। चुनावी बॉन्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जब से यह स्कीम शुरू हुई है राजनीतिक चंदे में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ADR के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 और 21-22 के बीच यानी 4 साल में राजनीतिक चंदे में